आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज हंगामा खेज रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर फौरी बहस के मुतालबे समेत मुख्तलिफ मौजूदात पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी की गई। पार्लियामेंट ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस के लिए 16 घंटे का वक्त मुख्तस किया है। अरकीन पार्लियामेंट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने से मुतालिक लोकसभा और राज्यसभा में मुआवजे की करारदादें पेश की। मुंबई में शदीद बारिश से रोजमर्रा की जिंदगी में रखना पड़ा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कोंकण में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। बांग्लादेश फिजाइया के तरबियती तैयारे के ढाका में एक कॉलेज की इमारत से टकराने से हुए हादसे में कम अज कम 20 लोग हलाक और 170 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। और भारत इस साल अक्टूबर नवम्बर में फिडे शतरंज आलमी कप की मेजबानी करेगा। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का आज से शुरू हुआ मानसून इजलास हंगामा खेज रहा और लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन पार्टियों की जानिब से बरपा किए जा रहे शोरगुल की वजह से ऐवान की कार्रवाई को कई मरतबा मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन जमातें पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर समेत मुख्तलिफ मामलात पर फौरी बहस का मुतालबा कर रही थीं। बाद में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई तीसरी मरतबा मुलतवी होने के बाद जब सपहर 4 बजे दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। शोरगुल और हंगामा राई जारी रहने पर सदर नशी ने कल तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी। इससे पहले पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इस बात को दोहराया कि हुकूमत बहस व मुबासे के लिए तैयार है।
पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए। जो भी बोल रहा है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। हंगामा करने से कुछ नहीं होता है।
राज्यसभा में भी मुख्तलिफ मौजूदात पर हंगामा आराई हुई जिसके बाद ऐवान बाला की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इस दौरान आज मुतअद्दिद अराकीन पार्लियामेंट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के मुतालबे पर मबनी मेमोरेंडम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश किया। लोकसभा के 145 अराकीन ने आईन की दफा 124, 217 और 218 के तहत जस्टिस वर्मा के खिलाफ मुआखजे की करारदाद पर दस्तखत किए। बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, एजीपी, शिवसेना, सिंधे और सीपीएम जैसी मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले अराकीन पार्लियामेंट ने मेमोरेंडम पर दस्तखत किए। इनमें बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और एनसीपी शरद चंद्र पवार ग्रुप की सुप्रिया सुले शामिल हैं। पार्लियामेंट जस्टिस वर्मा की रिहायशगाह से नकद रकम बरामदी से मुतालिक मामले की जांच करेगी। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि उन्हें ऐवान बाला के 50 से ज्यादा अराकीन की जानिब से जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने से मुतालिक दस्तखत करदा करारदाद मौसूल हुई है।
On an earlier occasion, that if the requisite number of members who verify their signatures and the number goes above 50 or more, I would proceed and deal with the issue of a signature that has been twice there and not owned by the member in a different manner.
इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूड़ी ने लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी के उस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐवान जेरी में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। जनाब रूड़ी ने ये बात पार्लियामेंट के बाहर आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बात करते हुए कही।
It's the prerogative of the speaker to decide who speaks when, and there is a whole process. But if I am very important, I want to speak any time I enter the house. Possibly this is not agreeable to any individual or to any legislator. Having said that, possibly it's more of a politics. And after that, a mayhem has always been created. So his idea is to walk in and walk out, let the mayhem prevail, and that's what is today happening in Congress party.
इससे कबल पार्लियामेंट के बाहर इजहार ख्याल करते हुए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया था कि वुजरा को ही ऐवान में बोलने की इजाजत है मगर अपोजिशन मेंबरान को बोलने की इजाजत नहीं है।
हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये नया अप्रोच है, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए।
पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट की कामकाज से मुतालिक एक मुशावरती कमेटी मुनक्किद की गई, जिसमें पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में मुसल्ला फोर्सेस की जानिब से की गई कार्रवाई पर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर तबादला ख्याल करने का फैसला किया गया। पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद इस मीटिंग में इस मामले पर लोकसभा में बहस मुबासे के लिए 16 घंटे का वक्त मुख्तस किया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स बिल 2025 पर तबादला ख्याल के लिए लोकसभा में 12 घंटे का वक्त, जबकि राज्यसभा में इस मामले पर बहस के लिए 9 घंटे का वक्त मुख्तस किया गया है। पार्लियामेंट ने राज्यसभा की मंजूरी के साथ आज बार बर्दारी से मुतालिक बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा इस बिल को इस साल मार्च में पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस बिल का मकसद शिपिंग से मुतालिक दस्तावेजात के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क को अपडेट करना और आसान बनाना है। ये 1856 के भारत के लेडिंग एक्ट की जगह लेगा। बार बर्दारी से मुतालिक ये बिल वो दस्तावेज है जो एक बार बर्दार की तरफ से शिपर को जारी किया जाता है। इसमें सामान की किस्म, मकदार, सूरतहाल और माल भेजने की जगह की तफसीलात शामिल होती हैं। राज्यसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी हुकूमत के इकतदार में आने के बाद सागरमाला प्रोग्राम के तहत वजारत का मंसूबा शुरू किया गया था और वजारत की जानिब से 805 से ज्यादा प्रोजेक्टों की निशानदेही की गई थी। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों पर 5.5 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सागरमाला प्रोग्राम के तहत इसका मकसद तमाम बंदरगाहों को जदीद बनाना और इनकी सलाहियतों में इजाफा करना है। सरकार ने कहा है कि उसने पायदार रोजगार पैदा करने और एक कुनबे की आमदनी को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए इफरात जर को कंट्रोल करने की गरज से सिलसिलेवार इकदाम किए हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने जरूरी अशियाए खुर्दनी का बफर स्टॉक बढ़ाने का फैसला किया, खरीदे गए गजाई अजनास की खुले बाजार में फरोख्त की और चुनिंदा गजाई अशिया की सब्सिडी पर खुर्दा फरोख्त को आसान बनाया। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इन इकदाम के मस्बत नतायज बरामद हुए और साल 2023-24 में खुर्दा इफरात जर की औसत शराह 5.4% से घटकर साल 2024-25 में 4.6% हो गई, जो कि गुजश्ता 6 वर्षों में सबसे कम है। हुकूमत ने एलपीजी एजेंसी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूशनशिप फराहम करने के बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल की जानिब से मुबैना तौर पर जारी किए गए अप्रूवल लेटर से मुतालिक दावों को बेनकाब किया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये अप्रूवल लेटर जाली हैं और मुतालिका शराकतदारों को मशवरा दिया है कि वह मुस्तनद मालूमात के लिए एलपीजी वितरक चयन की सरकारी वेबसाइट का इस्तेमाल करें। 8 अहम सनतों के मुश्तरका इशारे आईसीआई के जरिए पैमाइश करदा भारत के बुनियादी ढांचे की पैदावार में जून 2025 में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 1.7% का इजाफा हुआ है। कॉमर्स और सनतों की वजारत की जानिब से आज जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक स्टील, सीमेंट और रिफाइनरी मसनूआत में मस्बत नमू दर्ज की गई। आईसीआई 8 बुनियादी सनतों के मुश्तरका और इन्फरादी पैदावार की कारकर्दगी की पैमाइश करता है, जिनमें कोयला, खाम तेल, कुदरती गैस, रिफाइनरी मसनूआत, खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। इसके मुताबिक स्टील की पैदावार में 9.3%, सीमेंट की पैदावार में 9.2% और रिफाइनरी मसनूआत की पैदावार में 3.4% का इजाफा दर्ज किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। महाराष्ट्र के मुंबई और उसके मजाफाती इलाकों में आज मूसलाधार बारिश से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने पलघर को छोड़कर अगले 24 घंटे के दौरान मुंबई, नवी मुंबई, थाने और रायगढ़ समेत कोंकण खित्ते के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में रियासत में मॉनसून की मुसलसल बारिश से मामूल की जिंदगी एक बार फिर मुतासिर हुई है। आईएमडी ने कल रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रात से मुसलसल शदीद बारिश से सूरतेहाल मजीद अबतर हो गई है, जिसमें कबायली अजला किन्नौर और लाहौल स्पीति शामिल हैं। इमरजेंसी कार्रवाईयों से मुतालिक रियासती एजेंसी के मुताबिक گزشتہ 24 گھنٹے سے زوردار بارش اور مٹی کے تودے کھسکنے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں 2 لوگوں کی جان جانے کی خبر ہے، ساتھ ہی 1 پل اور کئی عمارتوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
آئی ایم ڈی نے اتراکھنڈ میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران گڑھوال خطے کے زیادہ تر اضلاع اور کماؤں خطے کے حصوں میں شدید بارش کے تعلق سے وارننگ جاری کی ہے۔ الرٹ کے تناظر میں وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے دہرادون میں اسٹیٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سے ریاستی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ بنگلہ دیش کی فضائی فوج کا ایک تربیتی ہوائی جہاز آج دوپہر راجدھانی ڈھاکہ کے اتارا علاقے میں کالج کی ایک عمارت پر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور 170 دیگر زخمی ہو گئے۔ بنگلہ دیش کی فوج اور فائر سروس کے محکمے نے بچاؤ کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ دفاع کی وزارت نے ایک بیان میں بتایا کہ چین میں تیار کیا گیا F-7 BGI طیارہ اڑنے کے فوراً بعد مائل سٹون کالج کی ایک عمارت پر گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے کے بعد بنگلہ دیش کی حکومت نے ایک دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
بنگلہ دیش کے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی جانب سے دی گئی تازہ معلومات کے مطابق بنگلہ دیش فضائیہ کا طیارہ ڈھاکہ کے اترا علاقے میں حادثے کا شکار ہوا، جس میں پائلٹ سمیت کم از کم 20 لوگوں کی موت ہو گئی۔ حادثے میں 170 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کا F-7 چین کے چینگڈو کا جدید ماڈل ہے، جسے سوویت MiG-21 کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ ڈھاکہ سے نول سنگ پرمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈھاکہ میں طیارے کے دردناک حادثے میں جانوں کے اتلاف پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ یگانگت کے اظہار میں بھارت اس کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پروفیسر آشم کمار گھوش نے آج ہریانہ کے 19ویں گورنر کے طور پر حلف لیا، وہ بندارو دتاترے کی جگہ لیں گے۔ ممتاز ماہر تعلیم جناب گھوش کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شیل ناگو نے چنڈی گڑھ کے ہریانہ راج بھون میں منعقدہ تقریب میں حلف دلایا۔ بہار میں جسٹس وپل ایم پنچولی کو آج بہار کے گورنر عارف محمد خان نے پٹنہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف برداری کی یہ تقریب پٹنہ کے راج بھون میں منعقد کی گئی۔ بامبے ہائی کورٹ نے سال 2026 کے ممبئی ٹرین دھماکوں کے کیس میں ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر 12 افراد کو بری کر دیا ہے۔ جسٹس انیل کلور اور جسٹس شیام چانڈک کی خصوصی بینچ نے 5 سزائے موت اور 7 عمر قید سمیت سبھی سزاؤں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ استغاثہ پوری طرح سے یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ ملزمین نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو ارضیاتی مشاہدے سے متعلق سیارچہ NISAR لانچ کرے گی۔ اسے امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا ہے اور اسے 30 جولائی کو شام 5:40 پر شری ہری کوٹا کے شار اسپیس پورٹ سے داغا جائے گا۔ بھارت عالمی شطرنج کپ 2025 کی میزبانی کرے گا، جو 30 جولائی سے 27 نومبر تک منعقد ہوگا۔ آج اس کا اعلان کرتے ہوئے کھیل کود کے عالمی ادارے فیڈے نے کہا کہ میزبان شہر کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ 2025 کے عالمی کپ کے چوٹی کے 3 فاتحین 2026 ٹورنامنٹ کے لیے براہ راست اہل امیدوار ہوں گے۔ فیڈے عالمی کپ 2025 کے ایک ناک آؤٹ مرحلے میں 206 کھلاڑی مقابلہ کریں گے، جس سے عالمی شطرنج چیمپئن شپ کے چیلنجر کا تعین ہوگا۔ قاہرہ میں آج شروع ہوئی ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں بھارت کے اناہت سنگھ، آرادھیا پوروال، انیکا دوبے، نویہ سندر راجن اور رودرا سنگھ کے خواتین کے سنگلز کے اگلے دور میں پہنچ گئی ہیں، تاہم انتی ترپاٹھی پہلے راؤنڈ کا اپنا پہلا میچ ہار گئی ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آغاز ہنگامہ خیز رہا۔ آپریشن سندور پر فوری بحث کے مطالبے سمیت مختلف موضوعات پر دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی مرتبہ ملتوی کی گئی۔ پارلیمنٹ نے پہلگام حملے اور آپریشن سندور پر لوک سبھا میں بحث کے لیے 16 گھنٹے کا وقت مختص کیا۔ اراکین پارلیمنٹ نے جسٹس یشونت ورما کو ہٹانے سے متعلق لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں مواخذے کی قراردادیں پیش کیں۔ ممبئی میں شدید بارش سے روزمرہ کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور کونکن میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بنگلہ دیش فضائیہ کے تربیتی طیارے کے ڈھاکہ میں کالج کی عمارت سے ٹکرانے سے ہوئے حادثے میں کم از کم 20 لوگ ہلاک اور 170 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اور بھارت اس سال اکتوبر نومبر میں فیڈے شطرنج عالمی کپ کی میزبانی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔